नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैंट कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं दिव्या तोमर। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ विजय लोकपल्ली। विजय, स्पोर्ट्स कैंट कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्ते दिव्या।
आइए सबसे पहले जानते हैं मुख्य समाचार। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज शिखर धवन ने क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। चीन के चेंगदू में बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप में तन्वी पत्री फाइनल में पहुंची, जी दत्तू ने कांस्य पदक जीता। पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय पैरा शूटिंग टीम पेरिस रवाना हुई। युवा मामले और खेल मंत्री ने 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्र से खेलों में भागीदारी का आह्वान किया। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी तीनों प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। राकेश, आप कैसे देखते हैं इसको?
आई थिंक अगर आप देखें वो लोग, उनका कोई चांस था नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अभी दुलीप ट्रॉफी अनाउंस किया तो उसमें उनका नाम नहीं था चारों टीम में, और काफी समय से खेल रहे हैं 38 साल की उम्र में। मेरे ख्याल से उन्होंने ठीक निर्णय लिया कि जो है संन्यास ले लिया।
जी विजय, आइए सुनते हैं क्रिकेट करियर की उनकी उपलब्धियों के बारे में हमारे सहयोगी मनोज की ये रिपोर्ट।
38 वर्ष के शिखर धवन ने 2004 में दिल्ली के लिए अपने प्रथम श्रेणी करियर की शुरुआत की थी। धवन ने अब तक 269 अंतर्राष्ट्रीय मैच, 34 टेस्ट, 167 एक दिवसीय, 68 टी20 मैच खेले हैं। वे दुनिया के उन 8 बल्लेबाजों में शामिल हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैचों में 40 से ज्यादा के औसत से 5000 से ज्यादा रन बनाए हैं। इन मैचों में उनका स्ट्राइक रेट 90 से ऊपर रहा है। इस सूची में भारतीय बल्लेबाजों में सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं। शिखर धवन ने टेस्ट में अपनी शुरुआत ही धमाकेदार तरीके से की थी। मोहाली में खेले गए अपने टेस्ट करियर की शुरुआत में उन्होंने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ा था। इस मैच में उन्होंने 187 रन बनाए थे और ये किसी भी डेब्यू कर रहे बल्लेबाज का सबसे तेज शतक है। 2013 में धवन ने वनडे में 50.52 के औसत और 97.89 के स्ट्राइक रेट से 1162 रन बनाए थे। 2013 की ही चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत में भी शिखर धवन की अहम भूमिका थी। चैंपियंस ट्रॉफी की 5 पारियों में उन्होंने 363 रन बनाए थे, इनमें 2 शतक थे। उन्होंने 2013 और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में गोल्डन बैट भी जीता था। इसी टूर्नामेंट से रोहित शर्मा के साथ सलामी बल्लेबाज की उनकी जोड़ी बनी। वर्ष 2021 में शिखर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली के बाद ये भारत की सबसे सफल सलामी बल्लेबाज जोड़ी साबित हुई। यही नहीं, आईपीएल प्रारूप में भी शिखर के नाम कई रिकॉर्ड हैं। क्रिकेट जगत में धवन को गब्बर, मिस्टर आईसीसी, जट जी जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। क्रिकेट जगत में उनके फैंस को मैदान पर उनकी अनुपस्थिति काफी खलेगी। स्पोर्ट्स कैन मनोज।
विजय, बिल्कुल जैसे मनोज ने कहा कि मैदान पर उनकी अनुपस्थिति जरूर खलेगी, क्योंकि इतना शानदार बल्लेबाज, इतना शानदार क्रिकेटर जब संन्यास ले रहा है तो उनकी जगह अब आप किसको देखते हैं आगे, कि कौन उनकी इस कमी को पूरा कर पाएगा?
कमी पूरी करने के लिए तो काफी सारे खिलाड़ी अभी हैं। देखिए, वो यशस्वी जायसवाल हैं, वो भी लेफ्ट हैंडर हैं और अच्छा खेलते हैं, पर इनकी जगह नहीं भर पाएंगे वो, क्योंकि शिखर में अपने आप में काबिलियत थी और वो ये थी कि वो भारत के बाहर उन्होंने काफी रन बनाए हैं कठिन परिस्थितियों में और बड़ी बड़ी बॉलर्स के अगेंस्ट। और चैंपियंस ट्रॉफी तो अभी मनोज ने बताया अपने बुलेटिन में कि कितने अच्छे से उन्होंने परफॉर्मेंस किया, बट यह है कि शिखर को मैं आगे समझता हूं कि कोई कोचिंग रोल उनको मिलेगा।
बिल्कुल। और महिला टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ए टीम की स्पिनरों ने अनौपचारिक टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज दूसरी पारी में भारत पर शिकंजा कस दिया, जिससे टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा है। जीत के लिए 289 रन का पीछा करते हुए भारत ने महज 149 रन तक 6 विकेट गंवा दिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में मैडी डार्के के नाबाद 105 रन के चलते 260 रन बनाए थे। भारत ने पहली पारी में 184 जबकि मेजबान टीम ने 22 रन बनाए थे। क्या लगता है विजय कि महिला टीम जो है किस हद तक इसमें खुद को आगे ले जा पाएगी?
देखिए, भारतीय महिला टीम अगर आप देखें सीनियर टीम में तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है सब तरफ, और ऑस्ट्रेलिया में खास करके जो पुरुष जो टीम गई थी उन्होंने तो पिछली दो सीरीज जीती हैं, और वहां खेलना बहुत कठिन होता है। परिस्थितियां, पिचेस देखिए, बाउंसी पिचेस हैं और उनका उनके उनके प्लेयर्स भी अच्छे हैं। सो अगर ये निकालते हैं ये मैच तो उनके खुद के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बड़ी बात होगी।
और अब बात करते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप में तन्वी पत्री ने सिंगल्स मुकाबले में फाइनल में पहुंच गई हैं और जी दत्तू ने कांस्य पदक जीता है। भारत की शीर्ष जूनियर शटलर तन्वी पत्री ने आज चीन के चेंगदू में अंडर 15 लड़कियों के एकल वर्ग में थाईलैंड की कुंगकेव काकानिक को हराकर फाइनल में पहुंची हैं। तो विजय, आप इसको कैसे देखते हैं? ये भी कुंगकेव काकानिक जो है वो दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं, तो इस जीत को पहले तो कैसे देखते हैं, और फाइनल में जिनसे इनका मुकाबला होने वाला है वियतनाम की गुएन थी हुई गेन से, उस मुकाबले को आप कैसे देखेंगे कि कितना कड़ा होगा वो और तन्वी कहां तक उसमें विजय हासिल कर पाएंगी?
सबसे बढ़िया दिव्य बात यह है कि तन्वी जो एक परंपरा बनी है
जी,
जिसमें अगर आप देखें युवा प्लेयर है अनमोल खर्ब फरीदाबाद की जो है, बहुत अच्छी प्लेयर हैं, और तन्वी पे प्रेशर ये होगा कि अगर वो जीत जाए तो आगे जो एक साइना मान लीजिए या सिंधु, इन्होंने जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखे हैं जहां पे महिला बैडमिंटन को इतने ऊपर पहुंचाया है, तो उसमें अच्छी खबर है कि एक सेकेंड लाइन तैयार हो रही है। और अंडर 15 में अगर आप जाके अगर आप फाइनल खेल रही हैं और जीत भी जाएंगी, हमें उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि टॉप सीड है, तो तन्वी से आप काफी उम्मीद करेंगे और आने वाले टाइम में आप देखिएगा इनका आप बहुत नाम सुनेंगे इनके बारे में।
बिल्कुल, और लड़कों के अंडर 17 वर्ग में जी दत्तू को सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के रादित्या बायु वर्धन से हार का सामना करना पड़ा, वो कांस्य पदक के साथ देश लौटेंगे। वहीं एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम ने आगामी एशियाई खेलों 2026 में आए के लिए अपना पहला कोटा हासिल कर लिया है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए एक एक स्थान है। सर्फिंग की एक विज्ञप्ति के अनुसार फेडरेशन ऑफ इंडिया एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय सर्फरों ने ये रैंकिंग अंकों के आधार पर ये कोटा अर्जित किया है। विजय,
और बहुत कठिन होता है सर्फिंग, मैंने अभी थोड़ा पीछे देखे हैं ये सर्फिंग के कॉन्टेस्ट, और ये तो अच्छी खबर है। एक अगर आप देखें भारत में ज्यादा उपलब्धियां नहीं, फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन यहां से अगर ये कुछ जीत के आते हैं 2 साल आगे तो अच्छा होगा, ये एक और खेल को प्रोत्साहन मिलेगा बहुत।
बिल्कुल, एक नए खेल को अवसर मिलेगा एक तरीके से। एशियाई चैंपियनशिप जो एशियाई खेल 2026 के लिए क्वालिफायर भी है, इसमें 8 भारतीय सर्फरों ने 4 अलग अलग श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा की है। भारतीय फुटबॉल टीम सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप और एएफसी अंडर 17 एशियाई कप क्वालिफायर की तैयारियों के लिए है, और इंडोनेशिया के खिलाफ 2 मैत्री मैच खेलेगी। पहला मैच रविवार को और दूसरा मैच मंगलवार को 27 अगस्त को जियानगर के कैप्टन आई वियान डिप्टा स्टेडियम में होगा। ये भारतीय समयानुसार शाम 5:30 पर शुरू होगा। तो कल के इस मैच के बारे में विजय, आप क्या कहेंगे कि कैसा भारतीय टीम फुटबॉल टीम का प्रदर्शन रहेगा? क्योंकि फुटबॉल अगर देखें तो कुछ जगहों पर ही सीमित है, भारत में भी देखा जाए तो, और ऐसे में कुछ फुटबॉल की तरफ भी भारत का जो रुझान अभी बढ़ रहा है बीते कुछ समय से देख रहे हैं, जब से खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू हुए हैं, तो इस कॉम्पिटिशन को आप कैसे देखते हैं कि भारत का कैसा प्रदर्शन रहेगा इसमें?
फुटबॉल, अगर आप फुटबॉल प्रेमियों से पूछेंगे तो वो बहुत निराश हैं, क्योंकि इतनी टैलेंट के बावजूद बड़े लेवल पे भारत कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन जूनियर्स में फेडरेशन का मानना है कि उनके पास टैलेंट है, नए कोच आए हैं, तो देखिए इसमें से कितना क्या अच्छा निकल के आता है।
डूरंड कप फुटबॉल 2024 में जॉर्ज पेरेरा डियाज के देर से किए गए गोल की सहायता से बेंगलुरु एएफसी ने बेंगलुरु एफसी ने चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में केरला ब्लास्टर्स को 1-0 से हराया। इससे पहले पूर्व चैंपियन मोहन बागान सुपर जायंट ने तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सडन डेथ पेनल्टी के जरिए पंजाब एफसी को 6-5 से हराया। निर्धारित समय में दोनों पक्षों के बीच मुकाबला 3-3 से समाप्त होने के बाद मैच पेनल्टी शूटआउट में चला गया। अब दूसरे सेमीफाइनल में मंगलवार को मोहन बागान सुपर जायंट का मुकाबला बेंगलुरु से होगा। पहला सेमीफाइनल सोमवार को शिलांग में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और शिलांग लाजोंग एफसी के बीच खेला जाएगा। पेरिस पैरालंपिक खेलों में पहले से भी ज्यादा उपलब्धियां हासिल करने के इरादे और उम्मीद के साथ भारतीय पैरा शूटिंग टीम पेरिस के लिए रवाना हो गई है। इस टीम में 10 एथलीट शामिल हैं। पिछले टोक्यो ओलंपिक में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक इस टीम ने जीता था। विजय, आप कैसे देखते हैं जो पैरा शूटिंग की हमारी टीम जा रही है, इसमें स्पेशली अवनी लेखरा और मनीष नरवाल पर सब लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, तो इस बार क्या वो अपना जो स्वर्ण का इतिहास है फिर से दोहराएंगे?
हाँ, उन्होंने क्लेम तो किया है बहुत कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है अवनी ने और बहुत मेहनत करती है वो। अगर आप टोक्यो आपको याद हो उन्होंने सबको स्तब्ध कर दिया था कि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि इस इवेंट में एक स्वर्ण पदक आएगा और वो लेके आई और उसके बाद उनपे हमेशा जहां पे भी पार्टिसिपेट करेंगी उनपे ये प्रेशर तो रहेगा कि क्या वो उसको रिपीट कर पाएंगी जो गोल्ड मेडल परफॉर्मेंस थी। और मुझे उम्मीद है क्योंकि मैं जानता हूं उनके जो कोचेस हैं और उसको जो पैरालंपिक कमेटी ने जो सपोर्ट दिया है, सरकार ने जो उनको सपोर्ट दिया है बहुत, क्योंकि शूटिंग बहुत कठिन होता है एक, क्योंकि आपको एम्यूनिशन चाहिए, जो पैलेट जिसे बोलते हैं आपका आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो सब उनको उपलब्ध कराया गया है।
बिल्कुल, और शूटिंग में पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों में मनीष नरवाल भी हैं शामिल, तो उनसे कैसी उनका प्रदर्शन से आप कितना हद तक आपको लगता है कि वो इस बार भी पदक लाने में सफल रहेंगे?
जी हाँ, जाने से पहले जो मैंने उनके बारे में पढ़ा
जी
वो वही फिर वही बात है कि उनका कॉन्फिडेंस तो है पर शूटिंग में होता क्या है कि दिव्या उस दिन आप कैसा परफॉर्म करेंगे, आपका फॉर्म कैसा रहेगा, आपका जो आपको नर्व्स अपने कंट्रोल करने पड़ते हैं।
बिल्कुल,
सो अभी हमने देखा यहाँ पे कैसे मनु भाकर ने जो है मेडल्स निकाले और जो जो जिसमें वो चौथे स्थान पे आई, फिर वही बात थी कि एक शॉट बहुत खराब चला गया उनका, तो वहां से पूरा मेडल
डिपेंड करता है।
हाँ हाँ, बिल्कुल डिपेंड करता है और शूटिंग बहुत ही टेक्निकल है और प्रिसाइज स्पोर्ट है।
बिल्कुल, शूटिंग कार्यक्रम 30 अगस्त को प्रसिद्ध चेटेऊ रॉक्स शूटिंग सेंटर में शुरू होंगे। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के लिए राष्ट्र से खेलों में भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मांडविया ने भारत को एक स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को दोहराया। श्री मांडविया ने प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि ये प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है कि अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें और सक्रिय रहें। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस न केवल हमारे खिलाड़ियों को सम्मानित करने का एक अवसर है बल्कि ये भी याद दिलाता है कि खेल हमें संतुलित और स्वस्थ जीवन बनाए रखने में कैसे मदद कर सकते हैं। विश्व शतरंज लीग के सीईओ समीर पाठक ने कहा है कि भारत में अकादमियों के माध्यम से शतरंज को संस्थागत बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि भारत में शतरंज को लोकप्रिय बनाने के लिए रोडमैप तैयार कर रहे हैं और उनका मानना है कि अकादमियों के माध्यम से इसे संस्थागत बनाना ही आगे का रास्ता है। भारत में शतरंज का चलन बढ़ भी रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। विजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को। नमस्कार।